किया, बस उनका क्या है, हम तो अपना तेज बढ़ा नहीं सकते, अपना हमें अपना तेज बढ़ाने का फेशियल कराना पड़ता है तो लेकिन अपने हाथ में ब्रह्म तेज का घुमाया रिमोट, बिल्कुल ऐसे लग रहा जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा हो। ये देखते ही प्रकाश में आकर्षित हो गए, वो बहुत बड़े मंच पर बैठे थे, नीचे उतरे, बोले आप तो सन्यासी हैं, आप यहाँ बैठे अच्छे नहीं लगते, आप आइए ऊपर आए। और फिर चर्चा शुरू की, आप क्यों प्रकाशानंद सरस्वती उन पे गए, क्यों ऐसे नाचते गाते हो, सन्यासी ऊपर अच्छा ठंड लगता है ऐसे आप नाचते गाते हो। फिर बोला हाँ मैं नाचता गाता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे गुरु का ये आदेश है, गुरु के पास गया था, गुरु ने बोला तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत वगैरह नहीं पढ़ सकते, ये मंत्र का जप किया करो। मैंने मंत्र का जप क्या किया, मैं तो पागल हो गया, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, रो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। फिर मैं गुरु के पास गया, उनको फीडबैक देने, क्या किया आपने, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो गुरु ने बोला बताओ क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते, बोले ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, कभी नाचता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी गाता हूँ, पसीने आ रहे हैं, कम कपी हो रही है। गुरु बोले बधाई हो, आपको तो प्रेम मिल गया, आपको प्रेम मिल गया, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे शिष्य को प्रेम मिल गया, मैं कृतार्थ हो गया, अब तुम्हें प्रेम मिल गया है तो मेरे आदेश सुनो। बोले क्या आदेश है, फिर इसी अध्याय के 92 नंबर प्रयाग में बहुत सुंदर आदेश ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के पिता है, तो ईश्वरपुरी क्या हो गए, दादाजी। तो हम लोग संकीर्तन आंदोलन में है, तो जो दादाजी ने पिताजी को आदेश दिए वो पोतों पर हम सब भी निर्भर है, हम सबके लिए भी लागू है। तो बड़ा अच्छा आदेश दिया उन्होंने, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशितार सर्वजन, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशे तार सर्वजन। ईश्वर मुझे ने कहा हे पुत्र भक्तों के साथ तुम नित्य थोड़ा कीर्तन करना चालू रखो। ईश्वर पूजी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु को सारे प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, फिर उनके गुरु ने आदेश दिया कि जाओ बाहर जाओ, नाचो गाओ भक्तों के संग में और संकीर्तन करो, कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करके सब जीवों का उद्धार करो। इस ढंग से ये आदेश उनको प्राप्त हुए, और उसके बाद ये जब आदेश प्राप्त हुए तो फिर बाद में ये उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में फिर और उनका विवरण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि इन वाक्यों पर मुझे अपने गुरु के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास है, एक बार वाक्य आपने दृढ़ विश्वास धरी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि गुरु ने आदेश दिया नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, इस वाक्य पर मुझे दृढ़ विश्वास है, और सही कृष्ण नाम का वो गवाए ना चाहे तो वो कृष्ण का जो नाम है मुझे गाता भी है नचाता भी है, गाही नाची आमी आपन इच्छा है, अपनी इच्छा से मैं नाश्ता गाता नहीं हूं, गुरु के आदेश है इसलिए नाश्ता गाता हूं। कितना महत्वपूर्ण है। और श्री प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य की ओपनिंग शुरुआत बहुत ही सशक्त तरीके से की, क्या पहला वाक्य सुनिए, जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं रख सकता अपितु स्वतंत्र रूप से कार्य करता है उसे कभी भी भगवान नाम कीर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं। यानी इस संकीर्तन में अगर सफल होना है, इस कीर्तन को सही ढंग से इसका परिणाम प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता यार्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जिस व्यक्ति को भगवान तथा गुरु के प्रति निर्विवाद, उसमें कोई विवाद नहीं है, श्रद्धा विद्यमान रहती है, उन्हें वेदिक ज्ञान का भावार्थ स्वतः ही प्रकट हो जाता है। सभी वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम है, निगम कलितम कलितम फलो, निगम कल्पत्रु कलितम फलो, पूरे वैदिक शास्त्रों का जो गला हुआ पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम है, और श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष है हरिनाम संकीर्तन। तो ये हरिनाम संकीर्तन की महिमा स्वतः ही प्रकट हो जाएगी जिसके हृदय में गुरु और कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, निर्विवाद श्रद्धा है। और श्री प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में इस श्लोक को लागू करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर पूजी के इस बात में विश्वास किया और उन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया। और प्रभुपाद कहते हैं कि हमने भी ऐसा ही किया। हमारे गुरु महाराज यानी कि प्रभुपाद गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज ने भी प्रभुपाद को पहले ही अपने मीटिंग में ये आदेश दे दिए कि आप जाइए पाश्चात्य देशों में और चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी बिल्कुल अपने कॉलेज के बहुत बड़े डिबेटर थे। एक बार किसी पत्रकार ने प्रभुपाद से पूछा कि आपका फेवरेट सपोर्ट स्पोर्ट क्या है, खेलते क्या है, प्रभुपाद कहते हैं डिबेट, डिबेट करना अच्छा लगता है। और प्रभुपाद अगर कभी हारे नहीं थे, लीडर थे बहुत बड़े, अपने कॉलेज के यूनियन के लीडर थे, महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग ले रहे थे और उनकी किसी भी सन्यासी में कोई श्रद्धा नहीं थी। प्रभुपाद और निमाई पंडित के जीवन में हम तुलना देखें, निमाई पंडित बड़े उद्दंड थे, सभी ब्राह्मणों को तंग करते थे, सबसे तर्क करते रहते थे, इसी तरह से प्रभुपाद डिबेट करते थे और उनके घर में इतने साधु आते थे, इतने साधु आते थे, सबके सब नकली साधु, प्रभुपाद किसी विश्वास नहीं था, हालांकि वो वैष्णव परिवार से थे। तो फिर उनके उनको जबरदस्ती ले गए भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज के पास और उनसे पहली मीटिंग में, हम सब जानते हैं 1922 में, तो भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज पहली मीटिंग बोला कि आप विदेशों में जाके प्रचार कीजिए। प्रभुपाद ने कुछ तर्क किया कि भारत परतंत्र है, भारत की बात कौन सुनेगा, इस समय प्रायोरिटी भारत को स्वतंत्र करना। भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज बोला नहीं, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना। तो इससे प्रभुपाद कन्विंस हो गए और प्रभुपाद को लगा कि मैं हार गया हूं, प्रभुपाद को बहुत सुख मिला हार के। और फिर प्रभुपाद ने तब से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया गुरु के इस आज्ञा को पूरी करने के लिए। प्रभुपाद ने जब अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ा तो एक बार उनके घर में भक्ति सरस्वती महाराज कई सन्यासी शिष्य आए हुए थे और सब चर्चा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की वाणी कैसे सत्य होगी, पृथ्वी राज्य नगर आदि नाम सर्वत्र प्रचार में हो, सब अलग अलग तर्क दे रहे थे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तब अभय चरण जो कि ग्रस्त आश्रम में थे, उन्होंने कहा जब शास्त्र में लिखा है तो क्यों नहीं सत्य होगी, एक दिन निश्चित रूप से यह सत्य होगी। तो सभी सभी जो सन्यासी शिष्य थे वो कन्विंस हो गए। बहुत वर्षों के बाद कलकत्ता में उसी उनके सन्यासी गुरु भाई ने एक विदेशी को वैष्णव पोशाक में देखा तो बड़े हैरान हो गए, ये विदेशी व्यक्ति है सर वैष्णव पोशाक सर मुंडा हुआ। सर ने पूछा कहां किसने आपको सिखाया, तो बोले मेरे गुरु महाराज ने। बोले कौन है आपके गुरु महाराज, बोले प्रभुपाद का चित्र दिखाया। तो सन्यासी उनके गुरु भाई ने देखा उस प्रभुपाद का चित्र तो उछल पड़े, वाह अभय चरण आपने कब लिखाया, आपने कब लिखाया जो आपने कहा था। तो प्रभुपाद को अपने गुरु के वाक्यों पर पूरा विश्वास था। तो बोले हमारे गुरु ने आदेश दिया कि जाओ विदेशों में, हम चले गए, किसी ना किसी ढंग से हमने इसको किया। प्रभुपाद ने अपने घर शुरुआत बहुत ही विनीत ढंग से और असहाय होकर की, लेकिन अभी पूरे विश्व में ये फैल रहा है। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम, इसी ढंग से हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्यों में भी यही भाव था। प्रभुपाद के शिष्यों को आप कल्पना कीजिए उस समय अमेरिका में कैसी चेतना थी हिप्पीज की। हिप्पीज खाली बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति करना चाहते थे बस, और इंद्र तृप्ति करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए थे तो एक नया तरीका ढूंढ रहे थे इंद्र तृप्ति करने का। अपने घर के ऐश्वर्य वगैरह से सब बोर हो गए थे, सड़क पर आ गए, फटे पुराने कपड़े, बिना कपड़ों के नंगे घूमते थे, चरस गांजा एलएसडी पूरा सोच रहे थे कि आनंद कहां मिलेगा। और ऐसे में एक बूढ़ा व्यक्ति भारत से संस्कृत बोलने वाला या बंगाली में बोलता कुछ समझ नहीं आता उसके बीच में आके रह रहे, और प्रभुपाद को देखते ही उन हिप्पियों को ऐसा लगा कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। और जब प्रभुपाद बोलते थे उनको लगता था कि प्रेम टपक रहा है और इतना गाढ़ प्रगाढ़ प्रेम उनको प्रभुपाद के हृदय में लगता था, ऐसा प्रेम उनको अपने घर से माता पिता भाई बहन मित्रों से कहीं नहीं मिला था। वो प्रभुपाद को भी आकर्षित हो रहे थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था और प्रभुपाद उनको जो बोलते थे चुपचाप मान जाते थे। उन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, उन्होंने कभी कृष्ण के बारे में कुछ जाना नहीं, कोई तस्वीर नहीं देखी होती थी। प्रभुपाद बोलते थे कि भगवान का आकार है, ठीक है आकार है, भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है, भगवान का रंग नीला है, अच्छा नीला है, भगवान को कृष्ण कहते हैं, अच्छा कृष्ण कहते हैं, मोर पंख सिर पे लगाते हैं, ठीक है ये सब समझ लेते, ठीक है। फिर बताया ये तो कृष्ण हो गए, फिर राधा रानी आ गई ऊपर से, राधा रानी का तो मतलब कितना गहरा है। फिर प्रभुपाद एक राधा रानी भी, अरे भगवान की गर्लफ्रेंड भी, अच्छा चलो। फिर उसको समझाया राधा रानी कौन है, ठीक है राधा रानी समझ गए, कृष्ण समझ गए, अब दोनों मिलकर चैतन्य महाप्रभु एक और बता दो। आप सोचो हमें सब समझ नहीं आ रहा क्या है, चैतन्य महाप्रभु बताया, फिर चैतन्य महाप्रभु का विस्तार पांच उसमें किया, पंच अच्छा पंच तत्व और आ गए। पूरा विस्तार में बताया, सब मानते गए। हाँ, निर्णय के बाद कोई विवाद नहीं किया, प्रभु ने समझ गया, हाँ जाओ प्रचार करो। सोचा संन्यास का डंडा पड़ा दिया, तुम यहां जाओ, तुम यहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम यहां जाओ। देखिए कितनी शक्ति है। आप सोचिए प्रभुपाद ये वर्ड यूज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल फोर्स। ये जो फोर्स है, ये स्पिरिचुअल फोर्स है, इसके कारण ये संभव हो पाया। ये हिंदी में इतना उसका निकल कर नहीं आ रहा। प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं, वी बिलीव इन द वर्ड ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड स्टार्टेड इन ए हम्बल वे, इन ए हेल्पलेस वे, बट ड्यू टू द स्पिरिचुअल फोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी दिस मूवमेंट हैज बिकम सक्सेसफुल। ये पूरा गुरु परंपरा चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है पीछे। बस ऐसे ऐसे लोग आप सोचिए, भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज ने अपने बड़े बड़े सन्यासियों को, जो कि बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे, उनको भेजा विदेश में, जाओ प्रचार करके आओ। वो असफल होकर असफल हो गए। और प्रभुपाद ने अपने भले तीन गृहस्था को भेजा, पति पत्नी और छोटे बच्चे उनके साथ, जाओ लंदन में प्रचार करो। क्या कंपेरिजन आप देखिए, वो गृहस्था भी जो कुछ महीनों पहले चरस गांजा एलर्जी पीते थे, उनके बाल मुंडवा के, उनके जो गर्लफ्रेंड से उनकी मैरिज करवा के, उनको साड़ी डलवा के, तिलक लगा के, कुछ ये समझा के बोला जाओ लंदन में चले जाओ। और एक भक्ति सिद्धांत सेठ महाराज के सन्यासी वैरागी बड़े पंडित शास्त्रों में निपुण, उनको भेजा भक्ति सिद्धांत सेठ महाराज ने, आप जाइए प्रचार कीजिए। सफल कौन हुआ सोचिए, किसकी शक्ति है? स्पिरिचुअल फोर्स है, गुरु के आदेशों में जो विश्वास रखता है, ये स्पिरिचुअल फोर्स पूरा। और इन तीन गृहस्थों ने कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया। श्याम सुंदर को एक बार बता रहे थे कि जब हम सैन फ्रांसिस्को में थे और प्रभुपाद आए, तो हम 20 लोगों का ग्रुप था इस्कॉन यूथ फोरम में, 20 लोग थे खाली, सारे हिप्पीज, और प्रभुपाद से बहुत आकर्षित थे। प्रभुपाद उनको देखते थे और बोलते थे, वेरी सून विल कवर द होल वर्ल्ड। क्या विश्वास है, 20 लोग हैं, वो भी हिप्पी चलो गांजा पीने वाले, उनको लेकर प्रभुपाद कह रहे हैं, वेरी सून विल कवर द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में छा जाएंगे बड़ी जल्दी। क्यों प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं? अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास। इसलिए प्रभुपाद के शिष्य ने भी अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास रखा। प्रभुपाद की एक शिष्या थी मंदाकिनी माता जी, यूरोप में थे। एक बार वो गौनिता के सामने खड़े हुए रो रहे थे कि मैं कोई प्रभुपाद की सेवा नहीं कर पा रही, सब लोग इतनी सेवा करते हैं। उसे प्रभुपाद आए, बोले कि मेरी एक सेवा करोगे? बोले यस प्रभुपाद बताइए। बोले तुम रशिया में जाओ और मेरा एक शिष्य है, एकमात्र शिष्य रशिया में, अनंत शांति, उससे विवाह कर लो, प्रचार करने के लिए आवश्यक है। आप सोचिए वो यूरोप में थी, शायद फ्रेंच थी या जर्मन थे, उसको बोलो आप जाओ रशिया में और जाके एक भक्तों से विवाह कर लो। उसे भी आनाकानी नहीं की, पूछ के बताती हूँ, सोचती हूँ, कुछ और बताइए ना प्रभुपाद, यही कुछ बता दीजिए ना, आसपास कुछ करना हो, मेरा बॉयफ्रेंड भी है, उससे है, कुछ है नहीं। यस प्रभुपाद रशियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी, वहां गई, शादी की और फिर प्रचार की। कुछ भी, पूरा विश्वास था जो प्रभुपाद अध्ययन करते थे, तभी तो ये संकीर्तन उन्होंने फैला। और उन्होंने प्रभुपाद की वाणी में से विश्वास क्यों रखा? क्योंकि प्रभुपाद खुद को अपने गुरु की वाणी में इतना विश्वास था। और प्रभाव उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज के जो दूसरे शिष्य थे, उन्होंने उनके आगे का पालन नहीं किया। भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज की इच्छा थी कि जीबीसी बने और जीबीसी बन के पूरी गुड़िया मठ का संचालन करे, लेकिन बाद में सब अध्यक्ष बनना चाहते थे, आपस में लड़ने लगे और संकीर्तन आंदोलन रुक गया। इसलिए जब हम गुरु के आदेशों से डेब्यूट होते हैं तो हम संकीर्तन नहीं कर पाएंगे। साक्षात उदाहरण दे रहे बड़े प्रभाकर, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन सत्य को स्थापित कर रहे हैं। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हम अपने जीवन में देखते हैं इस कौन में बहुत बड़े बड़े प्रचारक आते हैं और प्रचार करने का सफलता मिलती है, उनको लगता है कि हम प्रचार कर रहे हैं, और फिर वो गुरु के आदेशों से डेब्यूट होते हैं इस कौन से, वो लगते हैं खुद प्रचार कर सकता हूं। कई लोग इस कौन से बाहर चले जाते हैं, इस कौन से बाहर जाते हैं बिल्कुल फीके पड़े आते हैं, सारी की सारी शक्ति छीन ली जाती है। और जो इस कौन में रहते हुए भी प्रभुपाद की आज्ञा और गुरु के आदेशों के अनुसार नहीं चलते, उससे भी सारी शक्ति छीन ली जाती है। हमारे में कोई शक्ति नहीं है, ये स्पिरिचुअल फोर्स है। एक बार एक बहुत बड़े प्रचारक थे हमारे इस कौन में, और वो परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, और अच्छी कथा करते थे, अच्छे श्लोकों का उच्चारण, लेकिन कुछ सही ढंग से प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार नहीं चल रहे थे। तो महाराज को मालूम चला महाराज आए, भक्तों ने बोला महाराज कथा तो बहुत अच्छी करते हैं। महाराज बोले ऐसी कथा का कोई लाभ नहीं है, मेरा कोई शिष्य अगर गूंगा भी है वो उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा प्रचारक होगा अगर वो गूंगा शिष्य मुझको समर्पित है। आप सोचिए गुंगा व्यक्ति ज्यादा अच्छा प्रचार कर लेगा अगर वो गुरु के प्रति समर्पित है। इतना बड़े बड़े वेद के वचन बोलने वाला और शास्त्रों की बातें करने वाला जो गुरु के प्रति ही लॉयल नहीं है, चेष्ट नहीं है, समर्पित नहीं है, उसके प्रचार में कोई प्रभाव नहीं है। और ऐसा ही हुआ, वो व्यक्ति बिल्कुल जुगनू की तरह ऐसे प्रचारक आते हैं और चले जाते हैं। ये जीव हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि बद जीव की इच्छा रहती है। बड़े बड़े सन्यासियों की इच्छा होगी खाली अध्यक्ष बनने के लिए लड़ाई करने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कुमार के, तो हम लोग किस चीज की मूल्य है। सावधान होना चाहिए अपने अंदर की जो ये एक हमारी प्रवृत्तियां रहती है कि सब कुछ नियंत्रण करना है और सब कुछ ये बता रहे कि जैसे गुरु कालेश्वर से डेविएट होंगे प्रचार की शक्ति छीन ली जाएगी। ये अधिकार, प्रचार करने का अधिकार तभी उसी को मिलता है जिसको गुरु में दृढ़ विश्वास है। जितनी मात्रा में विश्वास रखेगा, जितनी मात्रा में अपने आप को समर्पित करेगा, उतनी ज्यादा उसको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु आदेश मिले नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। तो सबको ये हमारे जीवन का मिशन होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु छह अवतार है लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा थी पृथ्वीराज से नगराधि राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। हालांकि उन्होंने उनको छुपा के रखा, कोई भी चैतन्य महाप्रभु होगा कि यह भगवान है वो अपने कान बंद कर लेते थे, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। ऐसा क्यों? पहले तो मैं कुछ छुपा के रख रहे हैं, फिर कह रहे हैं कोने कोने मेरे नाम का प्रचार करो। क्यों करें ऐसा? क्यों कह समझ नहीं बात हमारी, प्रश्न समझ में नहीं आया। अपने आप को छुपा कर रहने वाले चैतन्य महाप्रभु बोले मेरे को कुछ प्रेम भी नहीं है, कान बंद करते थे कोई बोलते भगवान है, फिर बोले कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार करो पृथ्वी के कोने कोने में। क्यों कह रहे हैं ऐसा? नहीं, महाप्रभु चाहते हैं कि उनके अप्रकट होने के बाद उनको हर जगह हर जीव उनके कृपा का प्राप्त करे, इसलिए हर जीव का अधिकार है। चैतन्य महाप्रभु का विशेष आशीर्वाद है संकीर्तन आंदोलन में। महाप्रभु आए इसलिए तुम्हारे लेकर हमें आइए अवतार, ये अवतार मैंने आप लोगों के लिए दिया है, जीवों के लिए जो कि माया की गोद में सो रहे हैं। तो उनका उद्धार कैसे होगा जब तक वो महाप्रभु के विषय में जानेंगे नहीं? महाप्रभु छिपा के छिपके चले गए, फायदा क्या हुआ? छिपके आए छिपके चले गए, नहीं गए हैं तो सीधा खूब प्रचार करें हम उनका। प्रभुपाद कहते हैं कि महाप्रभु शुक्ल मेरा मोस्ट पॉपुलर गॉड, सबसे सब जीवों को मालूम होना चाहिए भगवान कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो इसलिए पृथ्वी के कोने कोने में भगवान के नाम के संदेश का प्रचार होना चाहिए, यही हमारे जीवन का मिशन होना चाहिए। हमें जिन भक्तों ने श्री प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण कर ली है और विशेषकर जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है उनका दूसरा जन्म हुआ है, और दूसरे जन्म में हमारा जो जीवन है ये पूरा जीवन इसी संकीर्तन यज्ञ के लिए होना चाहिए। यही गुरु का मिशन है, यही चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। कभी भी नहीं रुकना चाहिए ये संकीर्तन, ये गुरु का आदेश है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, इस वाक्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अपने जीवन की परिस्थितियां कैसे भी हूं हम सोच सकते नहीं, मेरे जीवन का तो मिशन था मैंने पीएचडी करनी है, मेरे जीवन का मिशन है बिजनेस को आगे बढ़ाना है। जो भी हमारे जीवन के मिशन हो, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो, उसको इस ढंग से ढालना है कि चैतन्य महाप्रभु और गुरु का मिशन पूरा हो, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का हम प्रचार करें। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। भारत भूमि रही मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी कर करोड़ का, विशेषकर भारतवासियों इस बात को गंभीरता से हमें लेना चाहिए। तो ईश्वर मुझे नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, खूब नाचो गाओ, लेकिन ये नाचना गाना प्रचार करना भी गुरु दादा देश में करना है। एक ने कहीं भी जाके नाचना गाना शुरू कर दिया, बोले आदेश बोला था ईश्वर मुझे का आदेश है नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कुछ लोग इकट्ठे हुए कहीं भी जाके नाचना गाना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। नहीं, ये जो प्रीचिंग है ये ही सुमेल सा बहुत इंटेलिजेंटली करनी चाहिए। जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो बहुत रिसर्च करके, मार्केट रिसर्च करके कहां पे इसको प्लेस करना है, कैसे एडवर्टाइज करना है, उस ढंग से करती है। इसी ढंग से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, कोलो का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये कोलो का प्रेम धन आया इम्पोर्ट किया गया है, इसको बड़े इंटेलिजेंटली हमने मार्केट करना है, यानी कहीं भी जाके नाचना गाना शुरू कर दे, तो ये नाचना गाना भी प्लानिंग के साथ और गुरु का आदेश, जहां गुरु आदेश दे वहां जाके नाचना गाना है, यानी कि स्वतंत्र तरीके से कहीं भी नाचना गाना कर लिया तो वो प्रचार इफेक्टिव नहीं होगा। हम देखते हैं, हम निंदा नहीं कर रहे, कई बार बहुत ही समितियां कमेटियां बन जाती हैं और वो अपने अपने ढंग से अपने प्रचार कर रही होती हैं बिना किसी निर्देश के, नहीं वो प्रचार इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ अगर आदेश है समिति कमेटी बनाने का फिर अलग बात है, अपने आप बनाकर अपना ही कुछ प्रचार कर रहे हैं उस संकीर्तन का लाभ नहीं है। एक बार एक वर्णन आता है श्री प्रभुपाद जी और तमाकृष्ण गोस्वामी महाराज, तमाकृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के लीडिंग डिसाइपल थे, बहुत ही प्रमुख सन्यासी थे और जीबीसी थे, और एक घटना हमने कई बार सुनी है लेकिन इससे बहुत शिक्षाएं मिलती है। और तमाकृष्ण गोस्वामी महाराज ने राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी बनाई, 60-70 बसें इकट्ठे कर ली संकीर्तन पार्टी से और धूम मचा दी उन्होंने, हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये संकीर्तन पार्टी बस में कुछ लोग घूमते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, प्रचार करते थे और नए भक्त बनाते थे, बसों की बसें भर गई, इतना पुस्तक वितरण और प्रभुपाद को संकीर्तन सो जाते, इतनी पुस्तकें पढ़ गई, इतनी कुर्सी पढ़ गई, प्रभुपाद बहुत पसंद होते थे। लेकिन हुआ क्या, वो इस ढंग से संकीर्तन कर रहे थे कि जो वहां के बाकी मंदिर के जो अध्यक्ष लोग थे उनको बहुत कष्ट होने लगा, उन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि जो ब्रह्मचारी मंदिर में रहेगा वो तो ग्रस्त बन जाएगा, ये क्या यहाँ फंसे हुए हो, चलो संकीर्तन में प्रभुपाद की सबसे प्रमुख सेवा, चलो बस ले आते थे, आते थे किडनैप करके ले आते थे ब्रह्मचारियों और बस पार्टी में चले गए, तो सारे के सारे प्रेसिडेंट से परेशान, मंदिर में कोई भक्ति नहीं है और भी टेम्पल अथॉरिटी का कोई वैल्यू नहीं, चलो संकीर्तन प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे, चलो हो जाता है। हम भी देखते हैं कई बार कई लोग मिलते हैं गुरु से, गुरु बोलते हैं हाँ प्रचार करो, अरे गुरु का आदेश में क्या प्रचार करो, चलो शुरू कर दिया प्रचार, अरे कैसे करना है क्या करना है, जो लोकल अथॉरिटीज से पूछे, ऐसे ढंग से खूब हो रहा है, बढ़ रहा है जबरदस्त, बात इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मचारी सन्यासी एक तरफ हो गए, क्रस्ता एक तरफ हो गया और जीबीसी मीटिंग होने लगी, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। मायापुर में 1976 की बात है, लंबी लंबी मीटिंग चल रही है सन्यासी और क्रस्तों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया कि मानते नहीं बात, ये सुनते नहीं, वो बोलते वैरागी का जीवन होना चाहिए, ये लोग अशुद्ध है, बड़ा जबरदस्त कन्फ्लिक्ट हो गया। और सबसे प्रमुख थे इसमें तमाकृष्ण महाराज, एकदम पक्का स्ट्रिक्ट, बड़ी लंबी डिस्कशन हुई, कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा, लंच टाइम हो गया, प्रभुपाद ने ठीक है सब जाओ, तमाकृष्ण महाराज फिर आ रहे हैं पीछे से, प्रभुपाद स्ट्रिक्ट रहना, प्रभुपाद ठीक है जाओ। फिर बड़े उसके बाद फिर दोबारा से मीटिंग्स हुई, फिर प्रभुपाद ने बोला देखो ऐसा है, ये इस ढंग से कॉम्पीट करने से आपस में सुविधा करने से सोल्यूशन नहीं मिलना। प्रभुपाद ने सबको समझाया, गृहस्था हो सन्यासी हो सब कृष्ण के दास है, सब मिलकर प्रचार करो और इस ढंग से आप मिलके रहिए, प्रभुपाद ने सबको शांत कर दिया। उसके बाद फिर तमाकृष्ण महाराज रात को रुक गए, बड़े प्रमुख सन्यासी थे प्रभुपाद के, बहुत क्लोज थे, उनको लगा प्रभुपाद सारी जीबीसी में सब लोग मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं तो मैं फिर छोड़ देता हूँ ये सब, चला जाता हूँ कहीं भी अकेले में चाइना चला जाता हूँ वहां के प्रचार कर लूंगा। प्रभुपाद ठीक है जाओ अभी जाओ रेस्ट करो। अगले दिन सुबह सुबह मंगल आरती से पहले प्रभुपाद ने हरीशोई प्रभु को बुलाया जो उनके सेक्रेटरी थे, और जल्दी से तमाकृष्ण और त्रिविक्रमा स्वामी को भेजो मंगल आरती से पहले। तो तमाकृष्ण महाराज मंदिर के अंदर आ गए थे तो बुला नहीं पाए, तो बाद में वो आए, जब बाद में आए तो प्रभुपाद स्नान कर रहे थे, तो हरिदास हरीश्वर को बता दिया कि ऐसे है प्रभुपाद बुला रहे थे, चाइना जाने के लिए कह रहे हैं। क्या चाइना जाने के लिए, बिल्कुल वेट कर रहे हैं प्रभुपाद बाहर आए, और उनके साथ उनके और साथी राधा मंगल पार्टी के थे गुरु कृपा स्वामी और मधु दिशा स्वामी, ऐसा करें ऐसे थोड़ी चले जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी इतना प्रचार चलता है ऐसे कैसे जा सकते हैं। इससे पहले जो प्रभुपाद से कई बार बहस करते थे चर्चा करके प्रभुपाद को मना लेते थे, तो वो पूरा कलेक्शन का तमाकृष्ण महाराज है बड़े पक्के हैं मना लेंगे प्रभुपाद को। प्रभुपाद बाहर आए, प्रभुपाद तिलक लगाने लगे, तो तमाकृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला कि प्रभुपाद इतना कुछ मैंने रात को प्लानिंग किया राधा और पार्टी के लिए, बहुत धूम मचा देंगे इस बार, तो बहुत कुछ हम करेंगे। प्रभुपाद बोला नहीं अब तुम्हें चाइना जाना है। कैसे जा सकता मैं, जिम्मेवारियां हैं। फिर गुरु कृपा स्वामी थे, प्रभुपाद आपको चाइना भेजना ना मैं चला जाऊंगा ठीक है, इनको यहीं रहने दो। प्रभुपाद ने बोला नहीं मस्ट गो, ही मस्ट गो। इससे पहले रात को प्रभुपाद ने अपने सेक्रेटरी हरीश को बोला था कि जितने भी ये जीबीसी है ना सबसे इंटेलिजेंट तमाकृष्ण महाराज है, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा सबको कंट्रोल करना चाहते हैं. ये वॉन्ट्स टू बिकम सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ दिस सोसाइटी. ठीक नहीं है, हो जाता है कई बार. ये बड़ा अच्छा लेसन है. तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं आपको चाइना ही जाना है. तो तमाशा महाराज बोला ये कैसे संभव है, इतने बड़े प्लान्स हैं. प्रभुपाद बोला जो प्लान्स हैं सबके सब यहीं रहने दो. ठीक है, आई एम ऑर्डरिंग यू गो टू चाइना. तो इसके बाद क्या हुआ, उनके बाकी साथी भी पीछे हो गए और वो बिल्कुल अकेले पड़ गए. फिर उन्होंने बोला तमाशा महाराज ने, अगर किसी को भेजना ही है तो जीबीसी को भेज दो, सन्यासी को भेज दो. प्रभुपाद ने बोला मैंने तुम्हें थोड़ी सी शक्ति दी है, तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, अब मैं तुमसे सारी शक्ति छीनता हूं. ठीक है, तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो चाइना जाओ या सब कुछ छोड़ के मायापुर बैठ के भजन करो. ठीक है. बोला और फिर तमाशा महाराज उनकी बात मान गए. ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा. तो इस ढंग से हम देखते हैं गुरुदाता देश, जैसे गुरु के आदेश हो उसी हिसाब से वहां जाके हमें संकीर्तन करना चाहिए. ये बहुत लंबा एक्चुअली गहरा ये विषय है और समय कम है. अब अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे संकीर्तन किया. ये जो संकीर्तन आंदोलन है ये बहुत विशेष है. हर कलयुग में हरि नाम की महिमा है. कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गणा कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग समाचार. लेकिन ये जो कलयुग है जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, इसमें हरि नाम नहीं है, ये प्रेम हरि नाम है. इस हरि नाम संकीर्तन से हमें प्रेम की प्राप्ति होती है. इसके पहले के कलयुगों में जो हरिनाम होता था उसमें प्रेम हरिनाम नहीं था. भगवान आदि लीला के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं, सही द्वारे आच्छा बले कीर्तन और संचारे नाम प्रेम माला ग्रंथि परैल संसारे. उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने जो अछूत थे उनको भी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और उन्होंने एक माला बना ली. अभी तक प्रेम और हरिनाम अलग अलग थे, चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को इकट्ठे मिला दिया और इसकी माला बना के पूरे संसार पे इसको इसका वितरण किया. तो ये प्रेम हरिनाम संकीर्तन है. ये हरिनाम संकीर्तन इसके पीछे बहुत गहरा तत्व है. हम सब जानते हैं हम लोगों की हरिनाम संकीर्तन की महिमा को तब समझ पाएंगे जब हम चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझ पाएंगे. चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही विशेष अवतार है. भगवान श्री कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी के भाव में है और भगवान श्री कृष्ण रसिक शिखर होते हुए भी राधा रानी के हृदय के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं. और श्री कृष्ण को यह लग रहा है कि जो रस मुझे प्राप्त होता है उससे भी उन्नत रस मेरे सर्वोत्तम भक्त राधा रानी को प्राप्त हो रहा है. तो वो रस क्या है, उस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी है और राधा रानी भी है. एक यूनिक एक अजूबा अवतार है और वो इस रस का आस्वादन कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन के द्वारा. जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन करते हैं या वैसे अपने भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करते हैं तो क्या चैतन्य महाप्रभु बहुत गहरा विप्रलम भाव भगवान से एक विरह का अनुभव कर रहे हैं. राधा रानी महाभाव स्वरूप ने जो महाभाव होता है प्रेम की परिकाष्ठा, कृष्ण प्रेम की परिकाष्ठा है महाभाव. और उस महाभाव में सबसे उन्नत महाभाव है मालानाख्या महाभाव जो कि विरह का भाव है. इस संसार में हम किसी से बिछुड़ते हैं तो हम रोते हैं, हमें दुख होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में केवल आनंद है और विरह का आनंद मिलन के आनंद से कई गुना ज्यादा है. और विरह का आनंद राधा रानी अनुभव करती है, इसको महाभाव बोला गया, मालानाख्या महाभाव. उसका आस्वादन करते हैं चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में. और यह संकीर्तन में महाप्रभु करते हुए बुला रहे हैं हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे. ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके महाप्रभु विप्रण भाव में भगवान से विरह अनुभव करते हुए कृष्ण को पुकार रहे हैं. समझ आ रही बात, कृष्ण को पुकार रहे हैं. और जब कृष्ण को पुकार रहे हैं और कृष्ण आते हैं, कृष्ण कैसे आते हैं, अपने नाम के रूप में. और जब कृष्ण का उनके नाम के रूप में चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा रानी के भाव में है उनसे मिलन होता है तो फिर महाप्रभु सबे अष्टात्विक विकार दिखाते हैं, तरह तरह के विकार उनके शरीर में आते हैं. जैसे कि हम श्रीमद् भागवत के 29 से 33 अध्याय में पंचदश अध्याय जो है उसमें हम देखते हैं कि रासलीला होती है कौन से अध्याय में, 33वें अध्याय में, जिसमें भगवान गोपियों के साथ नाचते हैं, और 30वें अध्याय में गोपियां भगवान के विरह में घूम रही है, और जब भगवान के विरह में घूम रही है तो भगवान की अलग अलग लीलाओं की वो नकल कर रही है, गोवर्धन पर्वत उठाने की, अगासुर के वध की, पूतना के वध की, तो भगवान के विरह में वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही है, और जब रासलीला में फिर वो भगवान के साथ मिलकर नाचती है। तो ये संकीर्तन है, ये भी एक सेलिब्रेशन है, लेकिन भगवान से विरह का सेलिब्रेशन है। चैतन्य महाप्रभु भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं, और जब उनका भगवान से मिलन होता है, मिलन किस रूप में होता है, भगवान के नाम के रूप में, और जब विरह मिलन होता है तो फिर चैतन्य महाप्रभु अपने विशेष भाव प्रकट करते हैं। ये बड़ा गहरा तत्व है, थ्योरेटिकली समझने का प्रयास कर सकते हैं। हम लोग जब संकीर्तन करते हैं तो हमें क्या हो रहा होता है, हमें भी विरह हो रहा होता है प्रसादम का, कब आएगा प्रसाद, हरे कृष्ण प्रसाद आएगा, है ना। प्रसादम की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें तुरंत फल मिल जाता है, महाप्रसाद एक गोविंद बोलते ही महाप्रसाद सामने आ जाता है, भगवान तुरंत सुनते हैं हमारी प्रार्थना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमें ना तो कोई विरह है ना कोई मिलन है, हम भौतिक स्तर पे कर सकते हैं, हमें अच्छा लग रहा है कीर्तन करना, या मन को शांति मिल रही है, कुछ कुछ आसपास नाचना अच्छा लग रहा है बस, तो हम ऐसे नाचते हैं। लेकिन किसी ना किसी ढंग से अगर हम इस संकीर्तन में भाग लेते हैं तो हम और धीरे धीरे हमें इस एक्सप्रेसी का, इस सर्वोत्तम भाव का कुछ बूंद हमें प्राप्त हो जाती है। भक्तों को संकीर्तन में भाग लेके आनंद मिलता है। तो ये जो आनंद है, भौतिक आनंद नहीं है, इससे पहले हम कहीं मैरिज पार्टीज में, डिस्कोटेक में भी नाचे होंगे, है ना। यहां बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं अपने आनंद के लिए नहीं नाचता था, है ना। भाग भौतिक जगत में हम देखते हैं, बस सड़क पे कोई मैरिज पार्टी निकलती है, आजकल कौन सी ट्यून चल रही है पता नहीं, पहले वो टकीना टकीना होता था, याद है किसी को, भूल जाओ अच्छी बात है, खूब नाचे थे लोग उससे, क्यों नाचे थे, हर किसी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, और वीडियो कैमरे वाला पास ऊपर लगाता था फोटो, खूब धार करके नाच रहे हैं, पागलों की तरह नशे में धुत, अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, ये हमारा नाचने का भाव होता था। एक बार एक हमारे भक्त थे, उनकी दादी माँ थी जो कि बूढ़ी थी, बड़ी विषय थी, बेटा शादी कर रहे शादी कर रहे, उसकी डेथ विश थी, अंतिम शादी कर रहा, क्या मिलेगा तुम्हें, बोले तेरी शादी में जींस डाल के नाचूंगे। बूढ़ी मामी है, जींस डाल के नाचना चाहती है, बुढ़ा में सबको बोल के आकर्षित करना चाहती है, ये उसकी मरने से पहले की इच्छा है, ये बोली मुझे महाप्रभु कह रहे हैं सबको अपने आकर्षित करने के लिए, नहीं, ये भौतिक शब्द थोड़ी नहीं है, जो हमें संगीत में आनंद मिलता है ये कोई ऐसा नहीं है, ऐसे धुन अच्छी लग रही है, बज रहा है तुम्बा, बज रहा है मृदंग, बज रहा है अच्छा लग रहा है, थोड़ा पूरे या फ्रेश होने बढ़िया, ये वैसे नहीं है। ये जो आनंद है भगवान की अंतरंग शक्ति है, श्रीमती राम वाली पुकार रही है, कि हमें इस संगीतन आनंद में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, हम बिल्कुल योग्य नहीं है इसके, बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, सर्वोत्तम आनंद, सर्वोत्तम गोलोक वृंदावन का, सतयुग में बड़े बड़े योगी 60,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद वो कहां पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा जी के लोक तक या कुछ वैकुंठ लोक में, और कलयुग में जहां पे इतनी समस्याएं, कलयुग में कितनी बीमारियां हैं, कितने दुख हैं, रोज नई बीमारी आ जाती है, अभी एक नई बीमारी आ गई, की बोला, हाँ हंसने आप हंसने, जिसको होगा वो जाने वो बीमारी है, नाम ऐसा हो सकता है, हर 10 साल के बाद 5 अगर नई बीमारी, स्वाइन फ्लू, आज से 50 साल पहले एड्स किसी ने सुना नहीं था, अब एड्स आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, डेंगू कभी सुना था कभी किसी ने, अब डेंगू होता है, ये होता है, बचपन से बच्चा कहा जाता है हृदय में छेद है उसे, ये सारी बीमारियां सतयुग में नहीं होती थी, द्वापर में ब्राह्मण का पुत्र मर गया, पिता से पहले बेटी की मृत्यु हो गई, राजा को सिंह कर दिया उसने, उग्रसेन को, किस तरह का राजा भाई, यहां तो घर में ही मार देते हैं। मतलब कलयुग इतना अभागा, मंद सुमंद मध्य, इतने दुर्भाग्यशाली लोग हैं, हमेशा चिंता में रहेंगे। ऐसे लोगों को सबसे उन्नत उज्ज्वल रस प्राप्त हो रहा है, और जो सत्यों के बड़े बड़े सतगुण में रहने वाले व्यक्ति, बड़े बड़े ऋषिगण, इंद्रियों के संयम, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, उनको बेचारों को जाएगा वैकुंठ लोक की प्राप्ति। वो देखेंगे, वो अभी तपस्या कर रहे हैं 10,500 साल से किसी दूसरे ब्रह्मांड में, उनके सामने अभी कुछ महीने पहले सारे चारों नियम तोड़ता था, मदिरा पान करता था, कोल्ड फ्लेक पीता था, मांसाहार करता था, अब उसके सामने वो सब निकल गया। उसके सामने आप किसी ब्राह्मण से निकलेंगे, भगवत नाम जाएंगे, तो देखेंगे किसी ब्रह्मांड में वो सत्य में बैठा हुआ व्यक्ति तपस्या कर रहा है, देखेंगे ये कौन जा रहा है, ये तो यार शराबी कबाबी व्यक्ति था, और ये ऊपर जा रहा है, मुझे छोटे मुझे बाईपास कर सीधा निकल गया भगवान के नाम पे, इतनी बड़ी कृपा है ये। हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है। समझ लो किसी कॉलेज में, आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपनीज आती है ना, आजकल वैसे आने रही बहुत कम आती है, पहले आती थी और वो कंपनीज होती थी, कम से कम 75% से ऊपर वाले लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, लेकिन ऐसी कंपनी आए कि वही इंटरव्यू देखो खाली फेल हो गए, ये चेतन है महाप्रभु, जो पूरी दुनिया भर के रिजेक्टेड लोग हैं वो आ जाओ उनको प्रेम दूंगा, ये कितनी बड़ी कृपा है। कोई फेलियर को आए और सबसे बड़ा पैकेज दे, लाओ 1 करोड़ का पैकेज, जाओ फेल हो जाओ, क्या क्वालिफिकेशन है फेलियर। ये हम ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिसको हम समझ पाएंगे, लेकिन समझे ये हम समझा नहीं सकते, हमें खुद को समझ नहीं आया, इतना गहरा है, इतना गहरा है, ये हमारी सबकी समझ से बाहर है, लेकिन बहुत सर्वोत्तम। आप सोचिए जिस रस का आस्वादन करने के लिए रसिक शेखर कृष्ण लालायित हैं, और उस रस का आस्वादन करके हम जैसे अयोग्य जीवों में बांट रहे हैं, वो कैसा रस होगा जिसके लिए स्वयं रसिक शेखर कृष्ण लालायित हैं, वो कैसा रस होगा, आप सोचिए। और वो रस हमें प्राप्त होगा इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने से, लेकिन आप लोग बता रहे हैं सही चेतना में, हरि नाम का भोक्ता नहीं बनना, स्वामी नहीं बनना। महाप्रभु ने कभी भी अपने आप को हरि नाम का स्वामी नहीं माना, अपनी इच्छा से नहीं नाचे, हम तो अपनी इच्छा से संगीतन में भाग लेते हैं, हाँ चलेंगे आज, चलो थोड़ा बहुत फ्रेश होके आ जाते हैं, आज थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा हूं, चला जाता हूं, आज नहीं जाऊंगा, कौन मृदंग बजा रहा है तब नाचूंगा, कौन गा रहा है तब करूंगा, नहीं मेरी मर्जी, मेरी मर्जी बस। हमें से कितने लोगों को लगता है कि संगीत में भाग लेना साधना का अटूट अंग है, हाथ तो खड़ा कर दिया, वो जाते हैं संगीत में, ये बड़े होली नेम वीक मनाया जा रहा है, इसलिए मनाया जा रहा है कि होली नेम का प्रचार वीक पड़ गया था, तभी होली नेम वीक मनाया जा रहा है। ये जो वो हरिनाम की महिमा, ऐसा नहीं है कि शास्त्र में बताया गया कि 10 दिनों में बहुत हरिनाम की महिमा बढ़ जाती है, कि इन 10 दिनों में हरि नाम लेगा उसको ज्यादा महत्व मिलेगा, नहीं, आज जीवन हमारा पूरा जीवन संकीर्तन यज्ञ के लिए है, स्वाहा संकीर्तन यज्ञ में स्वाहा करेंगे तो शुभ होगा, संकीर्तन यज्ञ में स्वाहा नहीं करेंगे अपने जीवन को, चिता के यज्ञ में स्वाहा तो हो ही जाएंगे, चिता में जल जाएंगे, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, जो धन संपत्ति घर जायदाद सब स्वाहा, क्यों ना संकीर्तन यज्ञ में अपने आप को स्वाहा करें, पूरा सब कुछ हम समर्पित करते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सेवक ठाकुर महाराज कहते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, बुरा मानिए हम में से अधिकांश कनिष्ठ अधिकारी हैं, कनिष्ठ अधिकारी में बड़ा घमंड होता है उसको अपनी भक्ति का, अपनी साधना का, हमसे बढ़कर कौन, उसको ऐसा लगता है, ऊपर से जो मर्जी बोलता रहे अंदर से उसका ये भाव होता है, और उसकी हमेशा दूसरे भक्तों से द्वेष की भावना लगी रहती है, लड़ाइयां होती रहती है अंदर ही अंदर, शीत युद्ध कर्म युद्ध होता रहता है, ऐसे है क्यों ना उसकी भौतिक चेतना है। तो भक्ति से हमारे बोलते हैं 100 जन्म तक ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को बहुत गहराई से ड्यूटी वर्शिप करनी पड़ेगी, तब जाके वो इस भौतिक चेतना से मुक्त होगा,
लेकिन अगर कोई इस्लाम संस्था में थोड़ा सा भी सहयोग देता है इस हरे कृष्ण आंदोलन में, तो वो सीधा चैतन्य महाप्रभु के प्रचार प्रचार आंदोलन में जुड़ जाता है और बहुत जल्दी वो कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी पे पहुंच जाता है। इसको इस हरिनाम संकीर्तन की महिमा को हम कुछ ग्रेस्प करने का, कुछ समझने का प्रयास करें। तो कुल मिला के बहुत कुछ है कहने को, लेकिन हम विराम देने का प्रयास करेंगे, रोकेंगे, 5 मिनट और लेंगे थोड़ा सा। कि इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हम सबके लिए ये आदेश है कि भक्तों के साथ हम नाचे गाएं, चाहे भक्त हमें अच्छे लगे या ना लगे, चाहे परिस्थितियां जैसे मर्जी हो, संकीर्तन को नहीं रोकना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के संदेश के प्रचार को नहीं रोकना चाहिए, यह हमारी साधना का अटूट अंग बनना चाहिए। और कैसे करना चाहिए प्रचार? सेवा की भावना से, भोग की इच्छा से नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। एक भक्त हमें मिले थे जो कि पंजाब से, बड़ी सुंदर बात बोले थे, बोले जी हमने तो नाचना है राधा राधिका रमन जी को रींझने के लिए। पंजाबी में रींझना शब्द होता है, मतलब भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम जब भी कीर्तन करें, भगवान के सामने नाचें, हरिनाम संकीर्तन में भाग लें, हम देखें हमें कोई विरह नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब इस संकीर्तन में भाग लेंगे कुछ हमें एक्सटेसी प्राप्त होगी, तो हम फील लड़ाई होगी, दोबारा एक्सटेसी मिलेगी, दोबारा वैसा आनंद मिले, तो विरह और मिलन हो रहा है हमारे साथ भी, और इस विरह मिलन विरह मिलन के होते होते हमारा हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध होकर फिर हम प्रेम को विकसित कर सकते हैं। इस ढंग से संकीर्तन में भागने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, और इस संकीर्तन में उस भक्त का संकीर्तन उतना प्रभावशाली होगा जो बहुत सख्ती से गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है, जो बहुत अच्छे ढंग से ध्यानपूर्वक जप कर रहा है, सख्ती से 4 नियमों का पालन कर रहा है, सभी वैष्णव सदाचार का पालन कर रहा है, उसके कीर्तन में ज्यादा प्रभाव होगा। कीर्तन केवल मधुर कंठ या अच्छा मृदंग अच्छी करताल में आने से नहीं है, मधुर कंठ मधुर स्वर भी चाहिए कीर्तन को आकर्षक बनाने के लिए, लेकिन असली जो चीज है कीर्तन के पीछे उसके हृदय में छिपे हुए भाव, सेवा के भाव। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये अवसर है। हरिदास ठाकुर जी की लीला में जब माया देवी उनको परीक्षा लेने आई थी, तो हरिदास ठाकुर ने बोला अच्छा ठीक है अभी मैं आपको संतुष्ट करता हूँ, यह सब लीला आपने सुनी होगी। तो उनको प्रतीक्षा कराई 3 दिन में, उसके बाद माया देवी को कृष्ण नाम प्राप्त हुआ। तो माया देवी ने बोला कि आप मुझे कृष्ण का नाम दीजिए, अपने पति से मैंने राम का नाम लिया था, राम का नाम तो मुक्ति दिलाएगा, लेकिन जो कृष्ण का नाम है ये प्रेम दिलाएगा, तो मैं अभी प्रेम चाहती हूँ, मुझे आप प्रेम दीजिए। माया देवी दुर्गा माता स्वयं ललायित है कृष्ण प्रेम के लिए। और फिर कृष्णदास कन्हैया जी आगे बताते हैं कि जिन्होंने इस कलयुग में मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद इस आंदोलन का लाभ नहीं उठाया, तो बोल रहे हैं कि आगे करोड़ों करोड़ों कल्पों तक ऐसे जीवों का उद्धार होने वाला नहीं है। जैसे इस सुनहरी शक्ति बहुत कम है, इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो आगे करोड़ों करोड़ों कल्पों तक कोई उद्धार नहीं होने वाला। बोले इस चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लेने के लिए तो प्रहलाद महाराज, 4 कुमार, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, स्वयं लक्ष्मी जी आ गए इसमें भाग लेने के लिए। बोले इन सबको तो छोड़ो, स्वयं अवतारी कृष्ण आ गए इस संगीत आंदोलन में भाग लेने के लिए। ये कृष्ण नाम का ये महामंत्र शब्द तो ऐसा है कि सब जीवों को छोड़ो, स्वयं कृष्ण को कृष्ण प्रेम से अपलावित कर देता है, इतना महान है। और फिर आगे कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण प्रेम है इसके लिए मुख्यतः 2 वस्तुएं चाहिए। मायादासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय है, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्म है। आप बोले कि ठीक है प्रभु जी आपने बहुत छोटा फॉर्मूला बता दिया, हरी नाम संकीर्तन में नाचना कूदना है सेवा की भावना से, नाचूंगा कूदूंगा प्रेम मिल जाएगा। नहीं, नाचने कूदने के साथ क्या चाहिए? साधु कृपा, साधु कृपा और हरि नाम से ही प्रेम मिलेगा। और ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित थे, इतने उद्दंड बालक थे, सबको परेशान करते थे। अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास सब जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे इस बालक को कृष्ण प्रेम दो, नमो महावद्याय कृष्ण प्रेम बताए थे। जो कृष्ण प्रेम के प्रदाता है
उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कृष्ण प्रेम दो। और जब निमाई पंडित दीक्षा लेकर आए तो फिर उनका पूरा जीवन बदल गया। और फिर निमाई पंडित ने जो ब्राह्मण होते थे गंगा के तट पर, उनकी सेवा करते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके कपड़ों को सुखाते थे, तैयार लगाते थे, उनके चरणों को छूते थे, तो सब बोले क्या कर रहे हो? तो बोले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो इस संकीर्तन आंदोलन में अगर हमें अपने जीवन को सिद्ध करना है, सफल करना है, तो साधु कृपा अति आवश्यक है। बिना भक्तों के आशीर्वाद के, कृपा के, हमारा हरिनाम प्रभावशाली नहीं होगा। कोई बोले आपने बता दिया हरिनाम लेना है बस, नहीं, केवल हरिनाम नहीं, साधु कृपा। इसीलिए एक तरफ बहुत ज्यादा हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवल, अभी आप बोले साधु कृपा बीच में कहां से आ गई? पूरा शास्त्रों का उक्ति है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवल, तो फिर आप बोले साथ में साधु कृपा भी है। लेकिन ये भी बोला गया है एका की अमार ना ही पाए बल। तो श्री प्रभुपाद भागवतम की तात्पर्य में लिखते हैं हरे नाम हरे नाम एक केवलम में हरे नाम के साथ साथ वैष्णव कृपा वैष्णव सेवा अंतर्निहित है, इंक्लूडेड है। बिना वैष्णव कृपा के हरिनाम हो ही नहीं सकता। इसलिए साधु कृपा और हरिनाम के बल पर हम अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं और इस संकीर्तन आंदोलन को अपना जीवन माने, इसको हम अपने जीवन का मिशन माने, इसी में हम अपने जीवन को समर्पित करें। इस यज्ञ में गुरु के आदेशों में दृढ़ विश्वास रखते हुए हरे कृष्ण। संकीर्तन यज्ञ में